स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 9 अक्टूबर और दिन बुधवार। कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने बदला रुख।
चीन भारत की अहमियत को समझता है तो ऐसे देखा जाना चाहिए कि आज शायद पाकिस्तान जो है वो चीन की मजबूरी है, परेशानी।
कांग्रेस ने भी कश्मीर में बीडीसी चुनाव का किया बहिष्कार।
कांग्रेस का आरोप है जो उनके चीफ का अजय मीर का, वो कहते हैं कि ये चुनाव इसीलिए किए गए हैं ताकि बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर हैं उनको जिताया जाए।
दुनिया जहान में जानेंगे क्या कुर्दिस्तान का सपना कभी सच हो पाएगा।
इनकी जद्दोजहद चल रही है, चाहते हैं यूनाइट हो जाना, अपना कुर्दिस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। चीन के विदेश मंत्रालय का कश्मीर पर हालिया बयान पहले से बिल्कुल उलट है। हाल ही में चीन ने कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान यूएन चार्टर और उसके प्रस्तावों के तहत होना चाहिए, लेकिन अब चीन ने कहा है कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय संवाद के जरिए समाधान खोजें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 और 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले चीन ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने पर कहा था कि भारत जम्मू कश्मीर की यथास्थिति से कोई छेड़छाड़ ना करे। पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में ले गया तो वहां भी चीन का समर्थन मिला था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि ढाका परिसर में एक विश्वविद्यालय छात्र के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बांग्लादेश विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्र अबरार फहद की मौत के बाद से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र विंग के सदस्यों की संलिप्तता की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को जारी किया है जिसमें परिसर में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। अबरार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना भी की थी। पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द प्रशासन ने नागरिकों से तुर्की सैन्य आक्रमण का विरोध करने के लिए जुटने का आग्रह किया है। लोगों से सुनियोजित हमले का विरोध करने के लिए सीमा पर जाने का आग्रह किया गया है। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के अमरीकी सैनिकों को क्षेत्र से वापस लिए जाने के विवादास्पद निर्णय के बाद आया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तुर्की से सीरिया में सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने की अपील की है। तेहरान में की गई इस टिप्पणी में रूहानी ने अमेरिका से सैनिकों को वापस लिए जाने का आह्वान किया और तुर्की पर संयम दिखाने के लिए दबाव डाला।
ما در اجتماع سران سه کشور روسیه ترکیه ایران
جب حال ہی میں ترکی روس اور ایران کے نیتاؤں نے ملاقات کی تھی تو ہم نے سپشٹ روپ سے کہا تھا کہ سیریا کی اتری سیما اور ترکی کی دکشنی سیما پر سرکشا کے لیے سیریائی سینا کی اپستھتی کے ذریعے ہی یہ سرکشا کی جا سکتی ہے۔ امریکیوں کو چھیتر چھوڑ دینا چاہیے۔ کرد جن کا دیش سیریا ہے انہیں سیریائی سینا اور سیریائی سرکار کا سمرتھن کرنا چاہیے۔ بند دروازوں کے پیچھے سودے کو کرنے کی मौजूदा प्रवृत्ति क्षेत्र के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं है। हम अपने पड़ोसी और मित्र देश तुर्की और तुर्की सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान और धैर्य दिखाने की अपील करते हैं। 14 दिनों के योजनाबद्ध प्रदर्शन के पहले ही 2 दिनों में सेंट्रल लंदन में 500 से ज्यादा जलवायु प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप सहायक आयुक्त लॉरेंस टेलर इस पर कहते हैं,
It's a really challenging operation for us. We've arrested an enormous number of people.
ये हमारे लिए सचमुच में चुनौतीपूर्ण कार्रवाई है। हमने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें से सभी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जानी है और इसमें समय लगता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों ने बड़े और मोटे साइकिल के चेनों से, डीलॉकों से खुद को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। ये सब हटाने में भी समय लग रहा है और एक बार इस क्षेत्र को साफ करने के बाद हमें अपनी उपस्थिति बनाए रखनी होगी, लेकिन हम अभी भी बाकी लंदन में निगरानी कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक जॉन बी गुडनफ, एम स्टैनली विंटनगम और अकीरा योशिनो को इन रिचार्जेबल बैटरियों को बनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 9 तारीख और दिन बुधवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत चीन से। कश्मीर के मुद्दे पर चीन अब तक पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अचानक ऐसा लग रहा है कि उसके रुख में न केवल नरमी आ रही है बल्कि बहुत हद तक वो भारतीय पक्ष का समर्थन करता हुआ भी दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि बेहतर है कि भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएं। चीन की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीनी दौरे पर हैं और सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि परसों 11 तारीख को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस पूरी घटनाक्रम पर सुनिए दिलनवाज पाशा की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केचियांग से मुलाकात की है। वहीं 2 दिन बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनौपचारिक मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि चीन अपने राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले पाकिस्तान को भरोसे में लेना चाहता है। इस्लामाबाद में हमारे सहयोगी आसिफ फारूकी बताते हैं।
चीन जो है उसने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो इंडिया के दौरे पे जाने से पहले पाकिस्तान को की जो लीडरशिप है उसको एतमाद में लेना चाहता है। ऐसा था कहना पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का। अब पाकिस्तान जो है वो इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट को और फिर वो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है ली शिनपिंग उनके इंडिया के विजिट को आपस में नथी कर रहे हैं और वो ये इस तरह की तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग जो है वो इंडिया जाने से पहले उन मुद्दों पर पाकिस्तान से बात करना चाहता है जिसपे वो इंडिया में जाके इंडियन लीडरशिप के साथ बात करेंगे।
लेकिन क्या इमरान की चीन यात्रा का शी जिनपिंग और मोदी की बातचीत पर असर होगा? चीन मामलों के विशेषज्ञ और दिल्ली के जेएनयू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को ऐसा नहीं लगता।
पिछले एक साल में ये चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तीसरा दौरा है जो दिखलाता है कि किस तरह से पाकिस्तान निर्भर है हर चीज के लिए चीन के ऊपर। तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा चीन और भारत के रिश्तों पर? कुछ हद तक पड़ेगा जरूर, पर आज चीन भारत की अहमियत को समझता है तो ऐसे देखा जाना चाहिए कि आज शायद पाकिस्तान जो है वो चीन की मजबूरी है, परेशानी है। भारत जो है वो चीन के लिए एक उम्मीद है और शायद चुनौती भी है उसके साथ साथ।
भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव भी बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या मोदी और जिनपिंग जब मिलेंगे तो कश्मीर पर भी चर्चा करेंगे? स्वर्ण सिंह कहते हैं,
देखिए भारत ने इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है कि भारत कश्मीर के मुद्दे को अंदरूनी मुद्दा समझता है, इसलिए इस शिखर वार्ता में कश्मीर पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये जरूर है कि यदि अनौपचारिक वातावरण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की नीति के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें बताएं कि भारत की नीति है क्या ताकि चीन को अपनी नीति निर्धारण में आसानी हो, तो हमारी तरफ से हो सकता है कि हम अपनी नीति को साझा करें चीन के साथ, पर उसका उससे ज्यादा कुछ मुझे लगता है कि इसमें बातचीत का कोई संभवता नहीं है।
वहीं आज बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के बीच सीपैक से जुड़े आर्थिक समझौते भी हुए हैं। पाकिस्तान चीन को ये भरोसा भी दे रहा है कि कई अरब डॉलर के चीनी निवेश से चल रही सीपैक परियोजना की गति भले ही धीमी हुई हो लेकिन पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व इस पर आगे बढ़ना चाहता है। आसिफ फारूकी बताते हैं,
पिछले एक साल से इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान में जो सीपैक है वो स्लो डाउन हो रहा है, तो उस पे पाकिस्तान जो है वो इश्योरेंस एक तरह की दे रहा है चाइना को कि ऐसी बात नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फुल अपना जोर लगाएगी कि जो सीपैक के प्रोजेक्ट हैं उसको स्लो ना होने दिया जाए।
पाकिस्तान चीन और भारत के रिश्तों के त्रिकोण में तीनों देशों का जोर अपने हितों पर ही है। देखना यही होगा कि इस कूटनीतिक दौड़ में कौन आगे नजर आता है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की। कल सरकार ने कहा था कि 10 अक्टूबर से पर्यटकों को घाटी में जाने की इजाजत होगी। उधर कांग्रेस ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। घाटी में आज क्या कुछ हुआ खास, यही सवाल पूछा बीबीसी उर्दू के शकील अख्तर ने श्रीनगर स्थित बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से।
कल से ये ऐलान हुआ है कि जो पर्यटकों के लिए घाटी जो है खोल दी गई है, पर्यटक आ सकेंगे। तो क्या उनके लिए कुछ जो सहूलत है वहाँ पर कुछ उसमें आसानियाँ की गई हैं, होटल्स वगैरह खुले हैं, क्या सिचुएशन है?
जी देखिए, वैसे भी यहाँ 1300 होटल हैं वो तो सबके सब खाली ही पड़े हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो इस ऐलान से वही लोग होंगे जिनका व्यवसाय पर्यटन इंडस्ट्री के साथ चलता है। लेकिन इसमें दिक्कतें ये हैं कि ये घोषणा जो है ये टूरिज्म सीजन खत्म होने के बाद जो है की गई है, और दूसरी बात ये है कि ये इतने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कौन करेगा, क्योंकि 4 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था कि सभी टूरिस्ट यहाँ से चले जाएं क्योंकि यहाँ खतरा है, अब चूंकि इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स के विरुद्ध ऑपरेशन भी किया जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ न इंटरनेट चलता है और न मोबाइल फोन चलता है, अगर पर्यटक आएंगे तो वो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में इधर से उधर जाने के लिए अपने अपनों के साथ जो है संपर्क में रहना चाहेंगे, तो उसके लिए किसी तरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि फोन संपर्क की बहाली जो है उसके दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि मतलब ये टूरिज्म एडवाइजरी जो है ये एक तरह से एक इशारा देने के लिए है कि यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं टूरिज्म के लिए वो तो अपनी जगह बरकरार हैं।
कांग्रेस ने जो है ऐलान किया है घाटी में कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो 24 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो हिस्सा नहीं लेगी, तो इसका मतलब ये जो मेन तीनों पार्टियां हैं NCP, PDP, कांग्रेस, वो तीनों ही इसमें हिस्सा नहीं ले रही हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हल्का सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, लगता है कि ये साधारण चुनाव है, ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इसमें आम जनता जो है वो भाग नहीं लेती है, इसमें जो चुने हुए पंच और सरपंच होते हैं वो भाग लेते हैं। कांग्रेस ने तो पंचायती चुनाव में हिस्सा लिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उस वक्त भी बॉयकॉट किया था पिछले साल, लेकिन इस बार जो ये कांग्रेस का आरोप है जो उनके चीफ का अजय मीर का, वो कहते हैं कि ये चुनाव इसीलिए किए गए हैं ताकि बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर हैं उनको जिताया जाए, तो इस तरह से एक राजनीतिक वैक्यूम पैदा हो गया है जिसमें अकेला एक्टर बीजेपी नजर आएगा, और जिसमें जो मेन की पॉलिटिकल एक्टर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, वो उसमें नजर नहीं आएंगे। और पहले ही जो पंचायती चुनाव हैं वो विवादित रहे हैं, क्योंकि 12,500 से ज्यादा पंच और सरपंच की सीट्स जो है वो खाली हैं, या तो चुनाव हुए ही नहीं है उन ब्लॉक्स में, या चुने जाने के बाद उन्होंने रिजाइन किया है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी गतिविधि है अगर राजनीतिक गतिविधि को देखा जाए, लेकिन इसमें जो ग्राउंड है वो अभी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मेन एक्टर्स इसका बॉयकॉट करेंगे।
दक्षिण कश्मीर में कुछ झड़पों की खबरें मिली हैं, उसकी क्या सूचना है?
2 महीने से यहाँ जिस तरह के हालात अस्थिर थे उसमें ऑपरेशन ऑल आउट भी स्थगित कर दिया गया था, और दक्षिणी कश्मीर से झड़पों की खबरें नहीं मिलती थी, तो पहली झड़प जो है वो अनंतनाग के अवंतीपोरा एरिया में हुई है, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जो दिलबाग सिंह है पुलिस के महानिदेशक, उन्होंने कहा है कि 200 से 300 जो सशस्त्र चरमपंथी हैं वो सक्रिय हैं घाटी के विभिन्न बागों में, और उनके विरुद्ध जो है अब ऑपरेशन में सख्ती लाई जाएगी, ताकि जो मिलिटेंट्स हैं गांधरबल, गुलमर्ग, सोनामर्ग और दक्षिणी कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में उनको खदेड़ा जाएगा।
श्रीनगर से ये थे BBC संवाददाता रियाज मसरूर। रियाज मसरूर जिस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव की बात कर रहे थे, आज उसके नामांकन की आखिरी तारीख थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की घोषणा की थी, उसके बाद से घाटी में होने वाला ये पहला चुनाव है। 24 अक्टूबर को BDC के चुनाव होने वाले हैं। तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया और उसके तमाम नेता या तो गिरफ्तार हैं या नज़रबंद। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इस चुनाव के बहाने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे घाटी की राजनीतिक फिजा में जो खिला पैदा होगा उसे भारत सरकार पर लोगों का विश्वास और कम होगा। सुनिए विनीत खरे की ये खास रिपोर्ट।
ऐसे वक्त जब कश्मीर घाटी में पार्टी नेता बंद हैं, इंटरनेट और मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे हैं, जम्मू में पार्टी नेता पूछ रहे हैं कि वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में उम्मीदवार कैसे खड़े करेंगे। कांग्रेस के रविंदर शर्मा कहते हैं कि पार्टी के सभी नेता नजरबंद हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करना नामुमकिन।
देखिए ये टोटल क्लास एंड कंफ्यूजन है, कोई पॉलिटिक्स का भविष्य नहीं है। जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसमें टोटल अनसर्टेनिटी है। कश्मीर में मेन स्ट्रीम जो बाकी लीडर सारे बंद है, इस सिचुएशन में आप कहते हैं कि कोई नई लीडरशिप डेवलप होगी वो कैसे होगी।
जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह भी चुनाव करवाने के तरीके से नाराज हैं।
देखिए ये तो ऐसा लगता है कि महज एक फॉर्मेलिटी करने के लिए ये BDC की इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में जो है वो डिक्लेयर की गई हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लीडर्स या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है या जेल में है, और ऐसे हालात में फ्री और फेयर इलेक्शंस और जो है सही जमहूरियत वक्त का जो तकाजा है कि सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए, उसके साथ एक मजाक किया जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेताओं का भी कहना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा,
आज की डेट में तो जब सब कुछ अंदर एक लॉकडाउन है तो इस वक्त पॉलिटिक्स की बात करना ही कोई मेरे हिसाब से गैर मुनासिब होगा। जब सब लोग बाहर आएंगे, निकलेंगे, लोगों के साथ रीच आउट होगा, लोगों से बातचीत होगी, तबादले ख्याल होगा, तो उसके बाद कोई ये पॉलिटिक्स की बात की जाएगी।
उधर बीजेपी के रविंदर रैना जम्मू कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी के कारण गिनाते हैं।
इनके ऊपर कोई केसेस नहीं रजिस्टर किए हैं, सिर्फ एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ केस लगाया, वो भी इसलिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईडी आईबी इनको ये अप्रिहेंशन थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी करके हालात खराब कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे हाउस अरेस्ट हैं, इनके अगेंस्ट कोई सरकार ने कोई एफआईआर डाल के इनको अंदर नहीं किया है जैसे ये करते थे।
जिन नेताओं को नजरबंद किया गया है वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनके अलावा शाह फैसल, सज्जाद लोन और कई पूर्व विधायक और अन्य नेता भी नजरबंद। घाटी में एनसी और पीडीपी के राजनीतिक भविष्य पर कयास लग रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में पढ़ाने वाले डॉक्टर नूर अहमद बाबा अराजकता की चेतावनी देते हैं।
एक डेंजरस वैक्यूम पैदा हो गया है जो फिल अप नहीं हो सकता। फिल अप इसलिए नहीं होता कि लीडरशिप की एक प्रोसेस से बनती है। लीडरशिप ये अचानक आप किसी को इम्पोज करके, क्योंकि लीडरशिप एक उसकी अपनी सलाहियत होती है, वो लोगों में आता है, मोबिलाइज करता है लोगों को। जब आप पूरा एक उसको ख़त्म करते हैं और उसको पूरा पूरी तरह बंद करते हैं तो एक आप एक डेंजरस वैक्यूम पैदा करते हैं, एक किस्म की एनार्की पैदा करते हैं। जैसे अभी लगता है कि कुछ लोगों की डिज़ाइन ये है कि वहाँ से कुछ लोग, यहाँ से कुछ लोग लाके एक लोगों पर थोप दिए जाए, तो ये लीडरशिप नहीं होती है।
उधर भाजपा के रविंदर रैना कहते हैं कि घाटी में नए राजनीतिक खून की कोई कमी नहीं है। कश्मीर में राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उन्हें पता नहीं है कि घाटी में राजनीतिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या रोड मैप है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
उत्तर पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के लिए उतारी गई अमरीकी फौज को आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वापस बुलाने का आदेश सुना दिया है। अमरीका वहां कुर्द मिलिशिया YPG के साथ मिलकर लड़ रहा था। अमरीका के सीरिया से चले जाने के बाद तुर्की YPG के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। आखिर कुर्दिस्तान के लिए कुर्दों की लड़ाई कहाँ तक पहुंची और क्या कुर्दिस्तान वास्तव में मूर्त रूप से ले पाएगा? इस बार की दुनिया जहान में इसी विषय पर रोशनी डाल रहे हैं मोहम्मद शाहिद।
दुनिया जहां
When they see a woman with a gun, they're so afraid they begin to shake.
जब वो बंदूक के साथ एक औरत को देखते हैं तो डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं। वो दुनिया के सामने खुद को एक कठोर आदमी के तौर पर पेश करते हैं। वो महिलाओं को मामूली चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं 100 के बराबर हैं।
ये है 19 साल की दिरेनिस, जो 5 साल पहले उत्तर पूर्वी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रही थी। दिरेनिस जैसी सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां हैं जो कुर्दिस्तान के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रही हैं। आजाद कुर्दिस्तान को लेकर शुरू हुई लड़ाई आज कई संगठनों में बढ़ चुकी है। अरब कुर्दिस्तान और उत्तरी अफ्रीका उस्मानी हुकूमत यानी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अलग अलग देश अस्तित्व में आए, जिसके बाद कुर्दिस्तान का इलाका आज सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान और आर्मेनिया जैसे देशों में बढ़ चुका है। इन इलाकों में रहने वाले कुर्दों की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। इतने इलाकों में बटे कुर्दों का कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग संगठन कुर्दिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है जो ये सभी संगठन एक मंच पर नहीं आ सके? इस सवाल पर मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह इनका अलग अलग देशों में बटा होना है। वो कहते हैं,
इनकी जद्दोजहद चल रही है, चाहते हैं यूनाइट हो जाना, अपना कुर्दिस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनके आपस में भी डिफरेंसेस हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं क्योंकि 100 साल से ये अलग से भी ज्यादा हो गया है इनको अलग हुए पे, और लेकिन ये है कि अलग अलग जगहों पर ये इनकी लड़ाई जारी है। इनकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लड़ाई लड़ रही है वो PKK है, ये कुर्दिश जमात है जो कि कम्युनिस्ट है, गोरिल्ला फाइट कर रहे हैं।
कुर्दों को इराक के उत्तर पश्चिम में एक स्वायत्त राज्य मिला हुआ है, जबकि तुर्की के दक्षिण पूर्व में ये स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। वहीं सीरिया के उत्तर पूर्व में ये अपना शासन चला रहे हैं। ईरान के उत्तर पश्चिम में भी कुर्द हैं, लेकिन वहाँ कुर्दिस्तान के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। तुर्की अपने यहाँ सक्रिय रहे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि PKK को चरमपंथी संगठन घोषित कर चुका है। एक अलग कुर्दिस्तान की मांग करने वाले PKK के खिलाफ तुर्की इतना सख्त क्यों रहा है? इस पर अंकारा की यिल्दिरिम बेयाज़ित विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ओमेर अनस कहते हैं,
1974 में जब कुर्दों की एक का संगठन PKK के नाम से अब्दुल्ला ओजलान ने 1974 में बनाया था, तो उस वक्त तुर्की के अंदर ये समस्या एक आतंकी संगठन का रूप लेने लगी, और उस वक्त अब्दुल्ला ओजलान और उनके संगठन ने पूरे तुर्की में बहुत ज़्यादा आतंकवादी हमले किए, जिसकी वजह से करीब 40,000 लोग मारे गए, और उसके बाद अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने PKK को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर मान लिया।
आजाद कुर्दिस्तान को लेकर आज सबसे बड़ी लड़ाई सीरिया तुर्की की सीमा पर मौजूद PYD और YPG संगठनों ने छिड़ी हुई है, क्योंकि तुर्की में इस समय 2 करोड़ कुर्द लोग रहते हैं। तुर्की PKK की ही तरह PYD और YPG को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि PKK ने उन्हें ट्रेनिंग दी है। IS के खिलाफ लड़ाई में YPG अमरीकी फौज का साथी रहा है, लेकिन अब अमरीका के सीरिया से चले जाने के बाद तुर्की आराम से YPG के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अमरीका चेता चुका है कि अगर ऐसा होता है तो वो तुर्की को आर्थिक रूप से तोड़ कर रख देगा। अमरीका के उत्तर पूर्वी सीरिया से जाने के बाद तुर्की कुर्दों के क्षेत्र में क्या करेगा, इस पर ओमेर अनस कहते हैं कि तुर्की सीरिया के साथ लगी सीमा पर सेफ जोन बनाने जा रहा है, जहां उसने सीरियाई शरणार्थियों को बसाने की योजना पेश की है। इसके साथ ही वहां से कुर्द लड़ाकों को खदेड़ा जा सकेगा।
तुर्की ने अभी हाल के दिनों में ये फैसला लिया कि अगर अमेरिका उनका साथ देगा तब भी ठीक है, और अगर नहीं देगा तब भी वो अब उस समझौते को जो ट्रंप और एर्दोगान के बीच में तय हुआ था, उस मुहैदे को, उस समझौते को तुर्की की फौज अकेले ही जा कर के लागू कर लेगी, यानी कि 30 किलोमीटर की गहराई में, और पूरे जो हसाका के नाम से जो सीरिया का राज्य है जहां पर कुर्दिश संगठन का की सत्ता है, उस पूरे राज्य के किनारे किनारे एक लंबाई में एक सेफ जोन कॉरिडोर बनाया जाएगा।
तुर्की के मुकाबले इराक, ईरान और सीरिया में कुर्दों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, क्योंकि वहां उन्हें मूलभूत अधिकार नहीं दिए जाते थे। 2002 में रजब तैयब अर्दोगान के सत्ता में आने के बाद कुर्द लोगों के लिए उनकी भाषा में TV चैनल और स्कूल खोला गया। हालांकि इराक में धीरे धीरे कुर्दों की स्थिति सुधरी और आज वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि उनके पास वहां एक स्वायत्त राज्य है। फिर इराक के कुर्द सीरिया, तुर्की और ईरान के कुर्दों की मदद क्यों नहीं करते हैं? इस पर कमर आगा कहते हैं कि इराकी कुर्दिस्तान के तुर्की से अच्छे संबंध हैं।
देखिए, वो सबसे ताकतवर तो जरूर है, उनके पास पैसा भी बहुत है, इसलिए वो ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन उनके रिश्ते जो है तुर्की से बहुत अच्छे है, खासतौर से बरजानी ग्रुप के।
अमेरिका ने जब उत्तर पूर्वी सीरिया में IS को खत्म करने के लिए YPG की मदद ली, तो इस कुर्द संगठन को लगा कि उसके स्वायत्त देश का सपना जल्द पूरा हो जाएगा। अमेरिका ने YPG की पैसे और हथियारों से मदद की, और इस संगठन ने IS को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं YPG के साथ सुरक्षा अभियान चलाने पर तुर्की अमेरिका से नाराज हो गया था। अब अमेरिका ऐसे समय में उत्तर पूर्वी सीरिया से जा रहा है जब कुर्दों को अपना एक अलग देश बनता नजर आ रहा था। आखिर अमेरिका ने एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान बनाने में मदद क्यों नहीं की? इस पर ओमेर अनस कहते हैं,
ये एक ऐसी बात होगी जिससे सिर्फ अकेले तुर्की नहीं बल्कि सीरिया, इराक और ईरान जैसे 4 बड़े राज्य प्रभावित होने जा रहे हैं। और ये चारों राज्य अच्छे खासे बड़े हैं, मजबूत हैं। ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ऐसा कोई बड़ा एडवेंचर करेंगे कि जिसकी वजह से वो इन चारों राज्यों को एक साथ मजबूर कर सकें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर चारों राज्यों की जो सेनाएं हैं वो जमा हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी, और वो यूरोप और अमेरिका के ऐसे किसी भी ऐसी योजना को वो फेल कर देंगे।
तुर्की ने पीकेके नेताओं के साथ शांति के लिए कई दौर की बातचीत की, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। वहीं सीरिया में मौजूद पीवाईजी जैसे कुर्द संगठन कभी राष्ट्रपति बशर अल असद के साथी हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका के साथ देने के बाद उनके असद के साथ संबंध ठीक नहीं रहे। इतने अलग अलग संगठनों के होने और अलग अलग लड़ाई के चलते क्या एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान का सपना कभी पूरा हो पाएगा? इस पर कमर आगा कहते हैं,
इनके डिफरेंसेस ये कल्चरल आपस में भी कुर्दों में, अरब कुर्द, सीरियन कुर्द, और जो वहाँ पे तुर्की में कुर्द हैं, पिछले काफी, क्योंकि सैकड़ों साल से ये अलग अलग देशों में रहते रहे हैं, वहाँ पे डायलेक्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आता है। और इनके अंदर सभी मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स भी ग्रुप पाए जाते हैं इनके अंदर, कुछ लोकल वहाँ के मजहब है उनके मानने वाले भी वहाँ पे हैं इनके अंदर, लेकिन अभी तक कोई एक ऐसी जमात बन नहीं पाई है। जो बनी वो कम्युनिस्ट बनी पीपीके, तो वो उसके ऊपर सब लोग राजी नहीं लगते मुझको।
तुर्की इस समय नेटो की दूसरी सबसे मजबूत फौज है। वो सीरिया में जो भी कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ पश्चिमी देश कोई बड़ा कदम उठाएंगे ऐसा होते नहीं दिखता। वहीं YPG जैसे कुर्द बलों के खिलाफ अगर लड़ाई तेज होती है तो वो वापस बशर अल असद से मदद मांग सकते हैं, लेकिन इस सूरत में असद सरकार उन्हें कोई समझौता कराने पर राजी होगी? इतने संगठनों में बटी आजाद कुर्दिस्तान की लड़ाई फिलहाल एक ख्वाब ही नजर आती है।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की करते हैं। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका से T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी धमाकेदार शुरुआत की है। मेजबान टीम ने बुधवार यानी आज खेले गए पहले वनडे मैच में मेहमान टीम को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारतीय जीत की नींव झूलन गोस्वामी की अगुवाई में गेंदबाजों ने रखी। इसके बाद बल्लेबाजों ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला टीम दूसरे नंबर पर बरकरार है। क्या कहना है इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल का, आइए जानते हैं।
जैसे हमने क्रिकेट शुरू किया है वुमेन्स का, ऐसा ऐसा हमारी रैंकिंग बढ़ती चले गई है और अच्छे खिलाड़ी हमें भी मिलते चले गए हैं। थोड़ा सा वक्त जरूर मिलता है, लेना देना चाहिए। काफी जो लड़कियां हैं उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू भी किया है, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा हो रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन वुमेन जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेंगे। अगर रैंकिंग की बात करें तो मैं समझता हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये और दो एक दो कंट्री और है जो कि अच्छा खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने भी अच्छा खेला हुआ है वुमेन्स टीम ने, और उसके बाद बाकी कंट्रियां भी ऐसा अपनी गेम जो है वो काफी इम्प्रूव कर रही है।
खेल समाचारों में आज इतना ही,
और अब चलते चलते एक बार फिर प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में पाया गया है कि मई महीने में अफगानिस्तान में हुए अमरीकी हवाई हमलों में कम से कम 30 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से 14 बच्चे भी थे। इराकी रक्षा मंत्रालय ने बागदाद और अन्य शहरों में हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच जारी किए गए हाई अलर्ट की स्थिति को खत्म कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय का कश्मीर पर हालिया बयान पहले से बिल्कुल उलट है। अब चीन ने कहा है कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय संवाद के जरिए समाधान खोजें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि ढाका परिसर में एक विश्वविद्यालय छात्र के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्द प्रशासन ने नागरिकों से तुर्की सैन्य आक्रमण का विरोध करने के लिए जुटने का आग्रह किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने तुर्की से सीरिया में सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने की अपील की है। BBC समाचार।
तो दिन भर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली तिलक भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।